एक बात याद आई थाने क्यों आप लोगों ने इस बात पर बड़ो विचार करनो चाहे ये सरल भाषा है एकदम। एक बात याद आई थाने क्यों इस बात पर थाने बड़ो विचार करनो चाहे। मारवाड़ी बोल और फिर हिंदी में बोले है, द्वापर युग के अंत में महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों आदर्श पुरुष थे। स्त्रियों में कुंती जैसी स्त्रियां बहुत उत्तम और ऐसी स्त्रियों का व्यवहार अनुकरण करने योग्य था। गांधारी और द्रौपदी भी पतिव्रता थी। युधिष्ठिर के और भाई भी श्रेष्ठ कोटि में समझे जाते थे, जिनमें सहदेव तो पंडित और सुयोग्य थे ही। बंद कर दो बोले। परंतु जब जब उन लोगों पर आपत्तियां आई, उस समय उन लोगों ने आपत्तियों का सामना किया। इतिहास इस बात को जनाता है कि वे लोग दुखों को दुख झेलकर ही सहते थे। उन लोगों ने बड़े बड़े दुखों का सामना किया। ऐसे दुखों का सहना बड़ा कठिन होता है। उन लोगों का सहना बहुत सराहनीय था। वैसे राम लक्ष्मण सीता का भी दुख सराहनीय रहा है। प्राय द्वापर युग के समय में स्वर्ग की प्राप्ति को लोग ज्यादा आदर दिया करते थे। मुक्ति के तत्व को जानने वाले तो उस समय बहुत कमती थे। कोई किसी को आशीर्वाद भी देता तो यही कहता कि तुम्हें स्वर्ग मिले। कोई किसी से वरदान या आशीर्वाद मांगता तो यही कहता कि महाराज मुझे स्वर्ग मिले। उनको स्वर्ग से बढ़कर आगे कुछ दिखता ही नहीं था, ये इतिहास बताता है। उस समय परिवार का मोह और स्नेह कम नहीं था, बल्कि स्नेह तो अब की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि उस समय मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, माता पिता का पुत्र के साथ संबंध, भाई भाई का संबंध अब की अपेक्षा बहुत बढ़ा चढ़ा था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसकी अपेक्षा, उस समय की अपेक्षा इस समय जमाने में हम लोग कोई मोह के त्यागी हो गए हों, ऐसी बात नहीं है। परंतु उस समय का प्रेम का संबंध ज्यादा था। उस समय स्नेह और प्रेम का संगठन बहुत अच्छा था। अब सांसारिक प्रेम का संगठन ढीला हो गया। उस समय प्रेम के कारण वियोग में अधिक चिंता शोक हुआ करते थे। अब तो लोग जितना शोक चिंता मरने पर दिखाते हैं उतना अंदर से होता नहीं है। यदि इस प्रकार का आजकल का मोह त्याग वास्तविक तत्वता तात्विकता को लेकर होता तो बहुत सराहनीय होता। तात्विकता को लेकर तो ज्ञानी महात्मा ही उछल सकता है, चलता है। स्नेह का बंधन ढीला होने के कारण ये सब बातें हो रही हैं। शास्त्रों में ठीक लिखा है कि दो आदमी को मोह और शोक नहीं होता, एक तो ज्ञानी को और एक महामूर्ख को। वर्तमान में स्नेह का बंधन ढीला होने में कारण है एक दूसरे को आपस में विशेष सुख न मिलना। सब अपने अपने सुख की चाहना में लगे हैं, तो सुख किसको मिलेगा? वो देखता है मुझे सुख मिले, वो देखता है मुझे सुख ज्यादा मिले, इसलिए दोनों को ही नहीं मिलता, दोनों ही दुखी हो जाते हैं। सराहनीय तो वो है जो निस्वार्थ भाव से, प्रेम की बहुलता से रहे और संयोग और वियोग में हर्ष और शोक न करे। अपने पूर्वजों का प्रेम उसको आदर्श मानकर चले। सबके साथ प्रेम करो, अपने घर में जनक के समान रहो, शोक मोह से रहित रहो। जनक जी के पास खूब सुख सामग्री थी पर उनको कभी मोह नहीं हुआ। जनक जी की कई बार परीक्षा ली, कोई शोक नहीं हुआ। संयोग वियोग में ऐसी स्थिति जिनकी बढ़ती है वो युधिष्ठिर से कम थोड़ा ही है। हम लोगों को भी परस्पर में एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए और आपस में स्नेह बढ़ाना चाहिए। अपने घर में भी इस बात का सदा ध्यान रखो कि आपस का प्रेम न टूटे। चाहे हमारा रुपया पैसा वस्तु किसी और भाई को ज्यादा भले ही मिल जाए, वस्तु टूट जाए, धन टूट जाए, पर प्रेम नहीं टूटना चाहिए। जिस परिवार में प्रेम की कमाई होती है वो परिवार असली कमाई में लगा हुआ है। जो केवल धन की कमाई में लगा हुआ है वो अपने आप से ठगा हुआ है। संसार की वस्तुओं का संयोग और वियोग ये प्रारब्ध के कारण से है। किसी को आप ज्यादा दे दोगे तो आप कंगाल नहीं हो जाओगे, और किसी से ज्यादा ले लोगे तो आप करोड़पति नहीं हो जाओगे, आप ऐसे ही रहोगे। दूसरी बात, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, इससे खूब सावधान होकर रहो। परिवार में मेरी बड़ाई हो ये भावना हृदय से निकाल देनी चाहिए। परिवार वाले मेरा मान करें ये बहुत नीची चीज है। मान बड़ाई से क्या पेट भरता है? मान बड़ाई से क्या पेट भरता है? क्या मान बढ़ाई से तिजोरी में धन बढ़ता है? क्या मान बढ़ाई से आपके आभूषण आ जाते हैं? क्या फायदा? एक झूठा मन को बहला बहला कर अहंकार बढ़ाना है। इसलिए मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा को अपने लिए बहुत घातक समझ करके सावधान रहो। जैसे कोई पागल कुत्ता हमारे पीछे दौड़ता है तो हम लट्ठी लेकर सावधान होते हैं, ऐसे मान बड़ाई पागल कुतिया के समान है। मैं यहाँ की घटना और सेवा भाव को देखता हूँ तो डागा जी की हम प्रशंसा करते हैं। सत्संग में प्रेम रहते हुए भी 3 दिन तक सत्संग में न आकर केवल सेवा ही सेवा की बात देखते हैं, ये कितना प्रशंसनीय कार्य है। इस समय डागा जी हमारे पास नहीं है, इसलिए पीछे से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके सामने नहीं करें, क्योंकि जिस मान बड़ाई प्रतिष्ठा को हम बुरा मानते हैं वो दूसरे को क्यों दें? क्योंकि मान का सुख और बड़ाई का सुख लेने से मनुष्य जो भक्ति भाव सेवा तप आदि करता है उसका वजन घट जाता है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ये बड़ाई की जाती है। इस प्रकार से जिनके साथ अपना कोई संबंध नहीं हो उनकी सेवा घर वालों से भी बढ़कर करनी चाहिए, तभी वो सेवा कहलाती है। संयोग और वियोग में हर्ष शोक नहीं होना चाहिए, इस बात की शिक्षा उनसे हम लोगों को सीखनी चाहिए। हमारे मन में बार बार ये बात आती है, आप लोग सोचेंगे कि एक बात को क्यों बोलते हैं, पर हम सच्ची बात समझ के बोलते हैं। आप मान बड़ाई प्रतिष्ठा से बहुत बचे रहो, परंतु मान बड़ाई प्रतिष्ठा से बचना खांडे की धार है। ऊपर से भले ही मान बड़ाई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए बोल दो, पर मान बड़ाई जब मिलती है तब क्या कोई रोया है? मान बड़ाई मिलती है तब क्या कोई दुख में डूबा है? अंदर से खुशी पैदा होती है, वो खुशी बताती है कि आप मान बड़ाई से चिपके हुए हो, ऊपर से कहने से क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं खांडे की धार है। मान बड़ाई प्रतिष्ठा को दरकिनार करके जो व्यक्ति सेवा करते हैं वो लाखों गुणों में सेवा बनती है, और जो सेवा करते हैं मान बड़ाई मिलती है ये मुक्ति के मार्ग में कलंक है। मान बड़ाई का उद्देश्य तो नहीं है, और मान बड़ाई के परमाणु हमारे अंदर स्वाभाविक ही है, क्योंकि मान बड़ाई प्रिय लगती है। इसका मतलब प्लेग के जंतु की तरह ये मान बड़ाई हमारे अंदर चिपकी हुई है। अतएव यह विशेष ध्यान रखने की बात है। ये हमारी भक्ति तपस्या को न्यून बना देने वाली है। बड़े सावधान रहो। अच्छे अच्छे संतों ने कहा है, कंचन तजबो सहज है सहज तिया को नेह, मान बड़ाई ई रखो दुर्लभ तजबो ए है। महाराज युधिष्ठिर में कई कई बातें इनसे बहुत बढ़कर थी। जैसे अपने साथ द्वेष करने वालों से वो प्रेम किया करते थे, और उनका उपकार करते थे और भी उनके अंदर कई उदारता की बातें थी। एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि दुर्योधन को चित्ररथ नाम के गंधर्व ने पकड़ लिया। युधिष्ठिर महाराज को मालूम चला कि दुर्योधन ऐसे गंधर्वों से घिर गया है, भारी संकट में पड़ गया है, तो अपने भाई भीम और अर्जुन से कहा कि तुम जाकर उसको छुड़ाओ। भाई भीम ने कहा, महाराज ये गंधर्व तो हमारी सहायता ही कर रहे हैं, दुर्योधन को छुड़ाकर हम नई आफत मोल क्यों ले वे? दुर्योधन तो संकट में पड़ा हुआ ही ठीक है। दुर्योधन के संकट में पड़े रहने पर हमारा संकट अपने आप ही उतर जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अरे भीमसेन, अपने लोग कुंती माता के बेटा होकर ये क्या सोच रहे हैं? कुंती के बेटा है अपने अपने कुंती के बेटा होकर ये क्या सोच रहे हैं? आखिर दुर्योधन हमारा भाई है, इसलिए बैर है तो हमारा आपस का है, लेकिन गंधर्वों के संकट में अपना भाई पड़ा है तो ये संकट अपने पर ही है। या तो आप लोग जाओ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं तो दुर्योधन को बचाने के लिए जाऊंगा। तब भीमसेन बोले कि ये तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी, हम जाएंगे। तो भीमसेन और अर्जुन दोनों गए और गंधर्वों से दुर्योधन को छुड़ा दिया। कितना बड़ा भारी संकट आया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। साथ ही साथ दुखों की प्राप्ति के समय उनका जैसा करुणा का भाव से विलाप होता है, उनका अनुकरण करना सराहनीय नहीं है। यदि कोई कारणवश या जाति के कारण कोई दोष आता हो या समय के कारण से दोष आता हो तो उसका अनुकरण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या ये कोई बात हो रही है? लिखने में गलती है। चलो, जैसे जुआ खां, मतलब उनका एक दो बातें उनकी ऐसी जो अनुकरण करने लायक नहीं थी। जैसे जुआ खेलना, स्त्री को जुए में लगा देना, इनकी न तो उस समय किसी ने प्रशंसा की और न ही आज कोई सराहता है। द्रोणाचार्य के वध के समय कपट युक्त बोलना भी इनकी सराहना में नहीं आता है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे बड़े महापुरुष के जीवन से अच्छाइयों को हमें लेना चाहिए। यदि उनसे किसी प्रकार की कोई बुरी घटना हुई हो और हमारा दिल उसको नहीं मानता हो तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब आई बात समझ। इनके जीवन की उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त अनेक बातें सराहनीय हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था, इस द्वापर युग में ये अनुकरणीय है और ये आदरणीय पुरुष थे। यदि हम लोग कोशिश करें, चेष्टा करें, तो ऐसे महापुरुषों से भी थोड़े ही समय में बढ़कर बन सकते हैं, ये कोई असंभव बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों में उनकी अपेक्षा अनेक प्रकार के दोष आ गए, बुरे आचरण हो गए, इतने गिरे हुए हम हो गए, फिर भी हम आप लोग उनसे बढ़कर योग्यता वाले और भाग्यशाली बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं लगती है। चाहे हम लोगों की कथा प्रचलित मत हो, चाहे हमारे लिए कोई महाभारत जैसा ग्रंथ न लिखे, तो भी हमारे मन के उद्देश्य से हम उनसे बढ़कर बन सकते हैं। उन लोगों के भीतरी वृत्ति तो निष्काम हो सकती है, परंतु भगवान कृष्ण के साथ में उनका बाहरी व्यवहार तो सकाम पुरुषों जैसा ही आता है। भगवान के प्रभाव को अर्जुन तो जानते ही थे, परंतु युधिष्ठिर को भी जानने वाला ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर के प्रभाव, भगवान के प्रभाव को हम लोग उनसे भी ज्यादा जानने वाले थोड़े समय में बन सकते हैं, हम उनसे बढ़कर बन सकते हैं। भगवान के वचनों के अनुसार चलने से उन लोगों से बढ़कर थोड़े दिनों में हम लोग बन सकते हैं। उन लोगों में जो कुछ यत्किंचित दोष आए हों, उनसे हम रहित बनकर अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को याद रखते हुए, उनकी शरण पर विश्वास रखते हुए हम लोग उनसे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। द्रौपदी है, कुंती है, गांधारी है, ये जो पतिव्रताएं माताएं हुई है, उनसे बढ़कर आज भी हमारी माताएं बहनें बन सकती हैं। उनकी उत्तम क्रियाओं का अनुसरण करो। उना के माँ स्नेह ने लेकर जो साधारण बात दोष की बात घटी है, उसको त्याग करते जाओ। जैसे गेहूं की ढेरी में कोई कोई पत्थर के टुकड़े आ जाए, तो गेहूं की ढेरी खराब और अग्राह्य नहीं होती है, उसके पत्थर के टुकड़ों को फेंकते जाओ और गेहूं काम में ले लो। इसी प्रकार उनके जीवन में कोई दोष दिखता हो, उसको फेंक दो और अपने आप को निष्कलंक बना लो। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की वृद्धि की कमी उस समय भी थी, बुद्धि की कमी। कैसा लिखा है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बुद्धि की कमी उस समय भी थी, सेवा भाव उस समय भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक था। प्राय स्त्रियों की भी कोई न कोई कामना को लेकर ही उस समय श्रद्धा थी। भगवान माए कामना न लेकर विश्वास हो तो भी सराहनीय है। भगवान कहवे चतुर्विदा भजन्ते माम, ये जन चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन है, आर्थो जिज्ञास और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब है। उस जमाने में यह सभी भाव चमकते थे, कुंती, उत्तरा, द्रौपदी, सुभद्रा आदि का कृष्ण में पूरा विश्वास था कि ये सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर हैं। ऐसा विश्वास होने का कारण ही वे आपत्ति काल में जांचना भी कर लेती थी। इस भांति उनका आचरण करना कोई अनुचित नहीं समझा गया। परंतु बड़ी बात तो यह है कि आपत्ति काल में भी आपत्तियों को सहना चाहिए, भगवान से भी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए, ये सराहनीय बात है। जैसे प्रह्लाद भारी से भारी आपत्ति आने पर भी उनको सहते रहे, एक बार भी उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि मेरे पर इतनी आपत्ति नहीं आ रही, इतनी आपत्ति क्यों आ रही है, इसको आप क्यों नहीं दूर करते हो, कोई उलाना नहीं दिया। ऐसा भीतर में वीर बनने की चेष्टा करनी चाहिए। सुंदर सोई सूरमा लोटपोट हो जाए, और कछु राखे नहीं चोट मुंह पर खाए। कितनी मुंह पर चोट खा ले, परंतु सूरमा वही है कि जो भगवान के सामने भी न कहे कि मुझे बचाओ। दुखों का सामना करने के लिए पट्टे का खिलाड़ी होना चाहिए। वो पट्टो वह यूं अटर बांधेड़ो हो और आगे वह लो रो यूं तलो भी नहीं घुमा बो करे, पट्टे का खिलाड़ी होना चाहिए। आने वाली विपत्तियों को हटाने के लिए न्याय युक्त चेष्टा करनी चाहिए। वो पट्टों को खिलाड़ियों घूमते हो कभी भी खुद भी लाग जाए, वह लाग जाए। ऐसे ही चाहे कितनी चोट लग जाए, दुख पाले, लेकिन भगवान से भी दुख से हटने की बात नहीं कहनी चाहिए। पट्टे का खिलाड़ी अपने सामने कोई योद्धा आ जाता है तो कट सकता है लेकिन पीठ नहीं दिखाता, मुंह पर चोट खा सकता है परंतु वो भागता नहीं है। ऐसे ही कितने ही चोट पहुंचे, आपत्ति आए, कभी भगवान से भी नहीं कहनी चाहिए। अर्जुन ने भारी विपत्ति आने पर भी पीठ नहीं दिखाई। भीष्म शरीर के पुरुषों को आदर्श मानकर वीरता से लड़ना चाहिए। कौरवों में भीष्म, पांडवों में अर्जुन, ये दोनों उस जमाने के बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पितामह भीष्म को मालूम था कि अर्जुन बहुत पराक्रमी योद्धा है और युवा है, मैं इसके सामने बुढ़ा हूं, और अर्जुन को कई अस्त्र वरदान से मिले हैं, और ये भी मालूम था कि अर्जुन के साथ में कृष्ण हैं, इनका मुकाबला मेरे से हो नहीं सकता है, परंतु हार नहीं मानी। भीष्म पितामह ने खूब जचा करके यथाशक्ति लड़ते रहे। पितामह भीष्म पर तो दुर्योधन का भी पूर्ण विश्वास नहीं था, परंतु पितामह भीष्म ने कोई परवाह नहीं की, अपने खूब युद्ध में अपने को झोंक दिया और पांडवों के पूछने पर पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का कारण भी बता दिया। शिखंडी को आगे रखकर और पीछे अर्जुन बाण मारे, तब वो बाण मेरे लगेंगे, मैं मर जाऊंगा। है कोई ऐसा योद्धा? युद्ध से भागे नहीं, ने तो कह देते अब हम युद्ध नहीं करें तुम कहो तो, पर नहीं, युद्ध से नहीं हटे और बाण चलाते रहे। क्षत्रियों के न भागने का गुण हम लोगों को धारण करना चाहिए। काम क्रोध लोभ इन शत्रुओं के साथ जोर से युद्ध करना चाहिए, इनको मारकर ही पीछे हटना चाहिए। इनके सामने कभी भागना नहीं चाहिए। इनको भगाने में यदि भगवान की आवश्यकता समझते हो तो जरूर आवश्यकता समझो और भगवान की सहायता लो, और दुख से भजने के लिए और दुख से भगने के लिए भगवान को कभी मत पुकारो। लेकिन काम क्रोध लोभ आदि से भगने के लिए भगवान को ही पुकारो। काम क्रोध लोभ के साथ में लड़ते रहो, इनकी मार सहो पर भगना नहीं, क्योंकि ये भगे हुए को विशेष मारते हैं। इसमें भगना क्या है? काम के वशीभूत होना, क्रोध के वशीभूत होना और लोभ के वशीभूत होना भागना है, और सन्मुख इनके सामने लड़े और झुके नहीं। इसी प्रकार से कामादि नीच भागने से पिन नहीं छोड़ेंगे, नीच तो पीछा ही करते हैं, इनके सामने से भागने से प्राण भी नहीं बचते, ये तो मुकाबला करने से ही पेश आते हैं। इनसे दाव पेश से बच जाना और अपना वार आने पर इनको कंठ पकड़कर दबा देना, सामने होकर चोट रखना, ये विजय का कारण है। हटना विजय का कारण नहीं होगा। लोभ जागृत हो तो मुकाबला करना पड़े तो भागना नहीं, यानी लोभ के अंदर डूबना नहीं, बलपूर्वक लोभ को त्याग देना चाहिए। त्याग से हृदय में चोट आती है, उस चोट को सह लेने का नाम वीरता है। जैसे युधिष्ठिर को जब जब लोभ का सामना करना पड़ा तब भागे नहीं, सामना किया। युधिष्ठिर का लोभ बताते हैं, यक्ष से भाई को उठाने के समय राज्य लोभ का त्याग और कुत्ते को साथ में ले जाते समय स्वर्ग के लोभ का त्याग। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तो अपने कुंती के बेटों को क्यों नहीं जिलाता, नकुल को क्यों जिलाता है? क्योंकि महाभारत के होने वाले युद्ध में भीम और अर्जुन तुम्हारी सहायता करने वाले हैं, तो भीम को जगाओ या अर्जुन को जगाओ, इनको जिलाओ, नकुल को क्या समझ के जिलाते हो? ऐसे समय में युधिष्ठिर ने लोभ नहीं किया, शूरवीरता दिखाई। दो माँ है, एक माँ का मैं बेटा हूं और दूसरी माँ का बेटा नकुल, हम दोनों माताओं के दोनों भाई जीवित रहे। यक्ष ने आशीर्वाद दिया तो लोभ को जीतने से उसके मांगने से ज्यादा मिलता है। ऐसे ही कुत्ते को साथ में ले जाते समय स्वर्ग का लोभ का त्याग किया, नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, तो वह कुत्ता इंद्र बनकर के सामने आया, धर्मराज बनकर के, कि हमने आपकी परीक्षा ली तो ज्यादा लाभ हुआ युधिष्ठिर महाराज को। इसका नाम है लोभ का मुकाबला करने पर सुंदर सन्मुख होकर चोट खानी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसी प्रकार काम का मुकाबला पड़ने पर अर्जुन की तरह रहना चाहिए। कितना अनुचित शाप भी सह लिया परंतु उसने काम का सामना किया, वे अर्जुन अपने मुद्दे में सावधान रहे, काम के वशीभूत नहीं हुए। अर्जुन ने जैसे मुकाबला किया ये आदर्श है। ये कथा अर्जुन की उर्वशी अप्सरा के साथ महाभारत में पढ़ सकते हैं। ऐसे चेष्टा करनी चाहिए। किसी भाई पर ऐसी आपत्ति आकर प्राप्त हो जाए तो शूरवीर रहो, अर्जुन की तरह काम को लात मार दो। इसी प्रकार जितने दोष हैं उनसे लड़ते रहो। क्रोध का उदाहरण देते हैं, शिशुपाल सभा में भीष्म को नाना प्रकार की कटुवाणी कह रहा है। शक्ति रहते हुए सब सहन किया और वीरता के साथ धीरता को काम में लिया, क्रोध के वशीभूत नहीं हुए, अक्रोध को धारण किया, वीरता को रखते हुए उसकी बातों का जवाब दिया, परंतु क्रोध नहीं किया। यदि शिशुपाल की बातों का जवाब न दिया जाता तो ये कायरता होती। वीरता पूर्वक उसको जवाब दिया, अपने को ही नहीं परंतु अपने स्वामी को कहे हुए कटु वचनों को सहे, कटु वचनों को सहना शेल की मार खानी है। शेल माने शेर नहीं, शेल है, शेल शेल, हाँ हाँ वो भाला जी हैं, ये लिखे तालब भी से लिखे वो। अब बेचारा लिखा तो है कि शेर जी का वचना किया संग्रह करे, मैं बतावे फाटोड़ा फाटोड़ा कागजा जीर्ण शीर्णों का ब्याह लिखा है लाई रामेश्वर जी मुंदड़ा, मतलब अक्षर बहुत यूं है मगर लिख लिया है बेचारा। शेल की मार रख खानी है, ये वीरों का काम है। ये उदाहरण हरदम आपके हृदय में आने चाहिए, नहीं तो सुनने का क्या फायदा। इतनी बातें सुनते हो, ये आपके हृदय में उदाहरण रहने चाहिए। जैसे आपके जेब में रुपया रहता है और मौके पर आप रुपया खर्च नहीं करो और भूखे मरते रहो तो रुपये की गड्डी क्या काम आई। ऐसे ही ये सत्संग की बातें, ये वीरता की बातें अपने हृदय में रखो और सूरवीरता से आगे बढ़ो। इस प्रकार मार खा खा करके काम क्रोध आदि से एकदम पक्के हो जाओ, उनका सामना करो। सामना करने के बाद, क्योंकि ये बहुत कमजोर चीजें हैं, ये अपने आप ही भग जाएंगी। लोभ के त्याग में युधिष्ठिर, काम के त्याग में अर्जुन, क्रोध के त्याग में भीष्म जी और महाराज श्री कृष्ण, इनको हरदम सामने देखो। भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, उन्होंने शांति पूर्वक गंभीरता पूर्वक शिशुपाल को दंड दिया। परंतु महाभारत को पढ़िए, वहां लिखा है कहीं किसी प्रकार क्रोध नहीं आया, क्रोध उत्पन्न नहीं होने दिया, क्योंकि ये लीला भगवान सारे संसार को बताने के लिए कर रहे थे कि आप लोगों के सामने भी भरी सभा में कोई अपमानित करने के लिए आए तो आपको इसी प्रकार से शांत होकर उसका वीरता पूर्वक मुकाबला करना चाहिए। जो आदमी काम क्रोध लोभ की जितनी मार खाता है वो उतना ही पक्का होता चला जाता है। बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वो अपने बराबर के पहलवानों के साथ जितनी बार कुश्ती लड़ते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पटकते हैं, उतने ही उनमें नए नए दाव पेच आते हैं और वे कुश्ती में अंत में जीत जाते हैं। ऐसे आपको भागना नहीं चाहिए और नए नए दाव के साथ इनकी कुश्ती लड़नी चाहिए। इनके सामने से भागने से पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये मरे हुए को मारते हैं। एक कुत्ता है, वह बूढ़ा है, पांव पांव वाला है, पांव पांव बीमारी, रोगी है, शरीर में मांस तक नहीं है, बड़ा दुर्बल है। ऐसा होने पर भी कुत्ती को देखकर उसके पीछे जाता है, यह उस मरे हुए को काम मारता है। ऐसा शत्रु है, जो इनसे डरता है, भागता है, उसको ये मारते ही चले जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसे छिपके आते हैं। मनुष्य बूढ़ा हो गया, शरीर में शक्ति नहीं है, बीमार है, तो भी सुंदर स्त्री को देखकर दोष दृष्टि करता है। ये कामादि शत्रु मरे हुए को मारते हैं तो वे जीत जाते हैं, जीत सकते हैं, परंतु जो तलवार लेकर सामना करते हैं और इनको झिड़की लगाते हैं, उनके सामने ये काम क्रोध आदि विकार भाग जाते हैं और वे तलवार लिए वे उनको दबा लेते हैं, मार देते हैं। इस विषय में अर्जुन युधिष्ठिर की महिमा गाई हुई है, आप उनसे भी बढ़कर बन सकते हो, आप हमारी बात पर विश्वास करो, भगवान की आपको पूरी सहायता मिल सकती है, इसके लिए चेष्टा करो। इस विषय में अविश्वास मत रखो, अविश्वास से मनुष्य का नाश होता है, भगवान पर विश्वास करो, उनकी शरण में हो जाओ, उनके भजन ध्यान में लगो, फिर यदि काम क्रोध चुपके से आने भी लगेंगे तो भगवान आपका उबार कर लेंगे। अर्जुन ने उस समय भगवान को नहीं याद किया था, फिर भी अर्जुन की भगवान ने रक्षा की, वो भगवान हमसे दूर नहीं है, हम लोगों की रक्षा करने में तो भगवान को विशेष आनंद का अनुभव होगा, इसलिए भगवान की शरणागति पर विश्वास रखो, स्मरण करो, अंत में आपका बेड़ा पार है, इसमें कोई संदेह नहीं है।